नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, उसके एक अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं।
जी,
अध्याय का नाम है उपासना का सही स्वरूप। और ये वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल,
हम में से ज्यादातर लोग, आप और मैं भी शायद, उपासना का मतलब समझते हैं पूजा पाठ, आरती कर ली, मंदिर चले गए, कुछ कर्मकांड कर लिए।
हाँ,
बस यही है ना।
हाँ, आमतौर पर तो यही धारणा है।
पर क्या पूज्य गुरुदेव के लिए उपासना सिर्फ इतनी ही थी या इसका कोई और गहरा मतलब है? तो आज हम कोशिश करेंगे इसी को समझने की, उपासना का वो गहरा अर्थ जो पूज्य गुरुदेव ने बताया, जो बाहरी चीजों से मतलब क्रियाओं से परे आत्मा के बदलाव की बात करता है, ईश्वर से जुड़ने की बात करता है। तो आइए देखते हैं गुरुदेव का नजरिया क्या है इस पर।
जी,
पूज्य गुरुदेव तो साफ कहते हैं कि जिसे हम आम तौर पर उपासना मान बैठे हैं, मतलब हाथ जोड़ना, कुछ फूल प्रसाद चढ़ाना, भगवान की तारीफ में गीत गा लेना, ये सब तो उपासना का सबसे बाहरी, सबसे गौण पक्ष है।
हाँ, सबसे कम महत्व वाला हिस्सा,
और गलती से हम इसी को पूरी उपासना समझ लेते हैं।
यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है।
लोग सोचते हैं कि भाई भगवान या देवता वो बस नारियल, मिठाई, ऐसी छोटी मोटी चीजों से खुश हो जाएंगे। या फिर हम उनकी थोड़ी चापलूसी भरी प्रार्थनाएं कर दें, तारीफें कर दें, तो वो हमारी हर इच्छा पूरी कर देंगे, चाहे वो ठीक हो या ना हो।
ये तो ईश्वर को बहुत छोटा समझना हुआ, नहीं?
बिल्कुल, ये तो ईश्वर के बड़प्पन को, उनकी महानता को एकदम अनदेखा करने वाली बात है।
पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं। जरा सोचिए ना, अगर सिर्फ मंदिर जाने से, दर्शन झांकी करने से या कुछ मंत्र दोहराने भर से आत्मिक उन्नति हो जाती, तो मंदिरों में जो रोज इतनी भीड़ जाती है वो तो कब की सिद्ध पुरुषों की जमात बन गई होती। पर ऐसा होता तो नहीं है।
सही बात है,
ऐसा नहीं दिखता।
तो असल में उपासना का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उपासन, यानी पास बैठना।
पास बैठना,
हाँ। पर ये वो वाला पास बैठना नहीं है जैसे बस में या कहीं भीड़ में लोग पास बैठ जाते हैं बिना किसी जुड़ाव के।
अच्छा,
ये तो है जैसे दो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, जिनके लिए कहते हैं दो जिस्म एक जान, ये वैसी वाली समीपता है, आत्मा का जुड़ाव है, मानसिक भावनात्मक निकटता।
अच्छा, तो ये शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसिक और आत्मिक स्तर पर पास बैठना है। ये तो काफी दिलचस्प है।
हाँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भक्त को ईश्वर के पास जाना है, उनकी तरह बनना है, मतलब भक्त बदलेगा।
हाँ बिल्कुल, यही सबसे मुख्य बात है। इस रिश्ते में भक्त को ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, अपना अहम छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर भक्त की मर्जी पर चलेंगे या उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते रहेंगे। ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, ये समर्पण का है।
समर्पण का। पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण दिए। जैसे देखिए, लकड़ी है, जब वो आग के पास जाती है, आग में मिलती है, तो क्या होता है, वो खुद आग बन जाती है।
हाँ, अपनी पहचान खो देती है।
बिल्कुल। या जैसे कोई गंदा बरसाती नाला है, जब वो पवित्र गंगा नदी में मिलता है तो वो भी गंगा ही बन जाता है। लोहा है, जब पारस पत्थर उसे छूता है तो वो लोहा नहीं रहता, वो सोना बन जाता है। मतलब उसे अपने लोहे वाले गुण छोड़ने पड़ते हैं।
अच्छा।
हाँ, तो इन सब का मतलब क्या है? जैसे ईंधन अपनी पहचान मिटाकर आग की ताकत पाता है, वैसे ही भक्त जब अपने छोटे मैं को, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों को ईश्वर की इच्छा में मिलाता है, तब उसे वो ईश्वरीय गुण, वो शांति, वो शक्ति मिलती है। भक्त को ईश्वर जैसा बनना है।
ईश्वर भक्त जैसे नहीं बनते।
नहीं, बूंद को सागर में मिलना होता है, सागर बूंद में नहीं समाता।
ये बहुत साफ तस्वीर देता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुभव से भी तो यही बताया है ना कि उनकी अपनी उपासना में कर्मकांड कम थे, श्रद्धा ज्यादा थी।
हाँ, वो यही बताते हैं। उन्होंने गायत्री को माँ माना और सविता देवता यानी सूर्य को पिता माना। और जैसे एक अच्छा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप से मांगता नहीं फिरता। वो तो बस उनके बताए रास्ते पे चलता है, उनके आदर्शों को अपनाता है ताकि उनका नाम रोशन हो। गुरुदेव का भाव भी ठीक वैसा ही था। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश की।
और उन्होंने ईश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित भी नहीं रखा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो ईश्वर को हर जगह महसूस किया, सर्वव्यापक, अपने अंदर, बाहर, अपने रोम रोम में। और इस एहसास से उन्हें ईश्वर के साथ एक होने का, मतलब घुलमिल जाने का अनुभव हुआ।
एकाकार होने का।
हाँ, एकाकारिता। जैसे पतंगा होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे दीपक की लौ में कूद पड़ता है, समर्पित हो जाता है। या जैसे पुराने समय में एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही अपना सब कुछ मान लेती थी, वैसा गहरा समर्पण भाव। इस भाव से उन्होंने उपासना की।
और इस उपासना का नतीजा क्या मिला उन्हें?
नतीजा कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, सबसे बड़ा नतीजा उनके अंदर आया, गहरा आंतरिक परिवर्तन।
आंतरिक परिवर्तन
कैसा?
जैसे वो कहते हैं कि गायत्री माता की शक्ति उनके भीतर श्रद्धा बनकर प्रकट हुई, मतलब आदर्शों पर टिके रहने की ताकत, फिर प्रज्ञा बनकर यानी सही गलत की गहरी समझ, विवेक, ईमानदारी, और निष्ठा यानी अपने लक्ष्य पर जमे रहना, हिम्मत और धैर्य, ये गुण उनके अंदर विकसित हुए।
अच्छा,
और सविता देवता का तेजस?
हाँ, सविता का तेजस उनके अंदर आत्मिक बल बनकर उतरा, सच्चा ज्ञान और भाव साहस, मतलब अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की हिम्मत, अच्छे कामों के लिए साहस, ये सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। और ये सिर्फ कोई कल्पना या एहसास भर नहीं था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने बहुत कठोर आत्मनिरीक्षण किया, बार बार खुद को जांचा परखा।
अच्छा, कैसे?
यही देखकर कि क्या उनके गुण, उनके काम करने के तरीके, उनके स्वभाव में सचमुच सकारात्मक बदलाव आ रहा है, उपासना सफल हो रही है या नहीं, इसका असली प्रमाण यही था, ये आंतरिक परिवर्तन, बाहरी कर्मकांड नहीं।
तो फिर आखिर में ये जो सच्ची उपासना है, ये इंसान को कहां ले जाती है, इसका अंतिम अनुभव क्या होता है?
पूज्य गुरुदेव के अनुभव के अनुसार ऐसी उपासना जब सद जाती है तो 2400 घंटे ईश्वर के पास होने का, उनकी समीपता का एहसास बना रहता है।
2400 घंटे?
हाँ, जैसे एक हल्का दिव्य नशा या खुमारी हर समय छाई रहती है। फिर जीवन में सुख आए या दुख, उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर वो अंदर से इंसान को हिला नहीं पाते।
मतलब एक स्थिरता आ जाती है।
बिल्कुल, एक गहरी शांति, और इंसान को हर चीज में, हर कण कण में, हर व्यक्ति में उसी ईश्वर की झलक दिखने लगती है। जीवन बहुत सहज, सरल और आनंद से भरा हो जाता है।
तो कुल मिला के सार यही है कि उपासना का असली मतलब बाहर के पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों में उतना नहीं है,
उनमें नहीं है,
जितना कि ईश्वर के प्रति खुद को पूरी तरह सौंप देने में, उनके जैसे अच्छे गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने में, और अपनी चेतना को, अपने पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे उनके साथ एक कर देने में है। ये तो असल में खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक आंतरिक यात्रा है, बाहर से ज्यादा अंदर चलने वाली प्रक्रिया है।
तो आज की इस बातचीत के बाद मुझे लगता है हम सबके लिए सोचने का एक मौका है कि ईश्वर के साथ हमारा अपना रिश्ता कैसा है, हमारी उपासना का रूप क्या है, क्या हम सिर्फ बाहरी क्रियाओं में ही तो नहीं अटके हुए, या फिर हम सचमुच अपने अंदर बदलाव लाने, समर्पण करने और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक जरूरी सवाल है।
बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण का विषय।